नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद शक्ति।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। अन्नू रानी ने अंतर्राष्ट्रीय वेस्टलाव मनियाग स्मारक एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत के चार प्रमुख मुक्केबाज अंडर 22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। ड्यूरेंट कप में आज नुरेका एफसी और इंडियन नेवी एफटी के बीच मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। और बिहार का राजगीर 9 और 10 अगस्त को होने वाली एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए तैयार। भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय वेस्टलाव मनियाग स्मारक एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अन्नू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 62.59 मीटर का भाला फेंका और इस सीजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
अन्नू ने अपने पहले ही थ्रो से शानदार फॉर्म में नजर आई। उन्होंने 60.96 मीटर का भाला फेंक कर शानदार शुरुआत की। दूसरे थ्रो में अनु ने 62.59 मीटर की दूरी नापकर स्वर्ण पदक पक्का कर लिया। स्पर्धा का रजत तुर्की की एडा तुकसुज और कांस्य पदक ऑस्ट्रेलिया की लियाना डेविनसन के नाम रहा। इस प्रदर्शन के साथ ही एशियाई चैंपियन अनु इस सीजन में दुनिया की शीर्ष 15 महिला भाला फेंक खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं। अब अनु का अगला लक्ष्य सितंबर में जापान के टोक्यो में होने जा रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 64 मीटर का क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करना है। वहीं पूजा ने 800 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम किया। उन्होंने 2:02.95 में यह दौड़ पूरी की। वहीं जिस्ना मैथ्यू महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 54.12 का समय लेकर छठे स्थान पर रहीं। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो उत्तरा जी, यहीं से चर्चा को शुरू करते हैं। 7 अगस्त का दिन भारतीय जैवलिन के लिए काफी लकी दिन माना जाता है।
बिल्कुल, हमारा सबसे बड़ा जो मेडल आया है वो उसी दिन आया है। और मुझे लगता है सिर्फ मेडल की बात नहीं है, जिस तरह से एक क्रांति आई है जैवलिन थ्रो में, ओवरऑल एथलेटिक्स को एक नई ऊर्जा मिली है, बट उसके अलावा जिस तरह से जैवलिन में अचानक से लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, हमारे थ्रोअर्स अचानक से निकल के आए हैं बहुत ज़्यादा, खिलाड़ियों में जिस तरह से जैवलिन की वजह से जैवलिन की तरफ एक अट्रैक्शन आया है, वो मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। और आपको समझ आता है कई बार कि किस तरह से एक मूवमेंट, एक मेडल पूरा आपका स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बदलने की हिम्मत रखता है।
जी बिल्कुल, और सबकी नजरें जो हैं इस समय यहाँ पे देखा जाए, हालांकि पूजा ने भी 800 मीटर में एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, लेकिन एथलेटिक्स खिलाड़ियों की नजरें इस समय सबकी टोक्यो पे टिकी हुई हैं कि अगले महीने वहाँ पे क्या होने जा रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों के लिए कितनी चुनौती इंतजार कर रही है?
देखिए, बिल्कुल आसान बिल्कुल नहीं होगा। जैसा कि अनु का बोला, आज उन्होंने बहुत अच्छा फेंका है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका जो क्वालिफाइंग मार्क है वर्ल्ड्स का, वो उनके पर्सनल बेस्ट से भी बेटर है, क्योंकि उनको 64 मीटर का चाहिए और वो आज तक उन्होंने नहीं किया है। तो अगर वो डायरेक्ट क्वालिफाई करना चाहती हैं तो उनको अपना पर्सनल बेस्ट, अपना नेशनल रिकॉर्ड सब बेटर करना होगा। हालांकि जो रैंकिंग्स हैं, जो रोड टू टोक्यो का जो लिस्ट है, उसके हिसाब से शायद वो क्वालिफाई कर जाएं। अभी टाइम है हमारे पास, और अनु भी एक दो और इवेंट्स में ज़रूर और पार्टिसिपेट करेंगी, मुझे उम्मीद है, तो हो सकता है वो कर जाएं। इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, पर वहां जाने के बाद सिर्फ पार्टिसिपेट करना, अब स्पेशली अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें, नीरज के मेडल के बाद से वर्ल्ड लेवल पे अब सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए जाना जो है वो अब मकसद नहीं रह गया है। अब हमारे खिलाड़ियों का जो टारगेट है वो भी बढ़ गया है, उनका एम्बिशन भी ज़्यादा बढ़ गया है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पार्टिसिपेट तो बहुत से लोग करते हैं, जब तक आप ये सोच के नहीं जाएंगे कि आपको जीतना है तब तक वहां पे जाने का कोई फायदा नहीं है। और सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे नहीं लगता अनु, क्योंकि बहुत सीनियर हैं और बहुत सालों से कर रही हैं, वो भी सिर्फ जाके पार्टिसिपेट करना नहीं चाहेंगी अगर वो क्वालिफाई थ्रू रैंकिंग्स करती भी हैं तो। और होना भी यही चाहिए, जितने भी हमारे अविनाश साबले थोड़ा इंजर्ड जरूर हो गए हैं, इस बारी नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पर जितने भी क्वालिफाई करके गए हैं, चाहे वो नीरज हों या गुलवीर हों, ये अब आपको ये एक उम्मीद रहती है कि ये सिर्फ वहां पे पहुंच गए हैं उससे खुश नहीं है, वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं। और मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप मेडल नहीं भी लाते हैं, अगर आप अपना पर्सनल बेस्ट एक बड़े स्टेज पे करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आप अपने लिए कितना हाई टारगेट लेके चल रहे हैं।
जी बिल्कुल, क्योंकि नीरज डायमंड लीग के पहले से ये तय कर चुके हैं, बता चुके हैं कि मेरी पूरी तैयारी जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए ही
बिल्कुल
है। भारत के नीरज, ईशान कटारिया, यात्री पटेल और प्रिया ने बैंकॉक में अंडर 22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने अपने भार वर्ग के फाइनल में पहुंचकर देश के लिए स्वर्ण और रजत पदक पक्का कर दिया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
भारतीय मुक्केबाज नीरज ने पुरुषों के 75 किलोग्राम में अपनी स्पीड और काउंटर अटैक का फायदा उठाते हुए दक्षिण कोरिया के क्योंघो बैंग को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद ईशान कटारिया ने सेमीफाइनल में अपने लंबे कद और दमदार मुक्कों के बल पर चीन के चेन चेन पर दबदबा बनाते हुए पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं ने भी अपने मुक्कों से दमखम दिखाया। यात्री पटेल फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। उन्होंने लेफ्ट राइट पंच के कॉम्बिनेशन का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए वियतनाम की थी नुंग क्वान को 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में हराया। प्रिया ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। अंडर 19 और अंडर 22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन एक साथ हो रहा है। भारत ने इन दोनों वर्गों में कुल 40 मुक्केबाजों को बॉक्सिंग रिंग में उतारा है। सेमीफाइनल में पहुंचे 4 अन्य भारतीय मुक्केबाजों में रॉकी चौधरी दुर्भाग्यशाली रहे और चोट के कारण अपना मुकाबला पूरा नहीं कर सके। वहीं 60 किलोग्राम वर्ग में हर्ष और 90 किलोग्राम वर्ग में मयूर और अंकुश ने अपने मुकाबलों में पूरा दमखम दिखाया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कि ये चारों मुक्केबाज कांस्य पदक के साथ देश लौटेंगे। भावना शर्मा को महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 60 किलोग्राम वर्ग में पार्थवी ग्रेवाल, 65 किलोग्राम वर्ग में प्रांजल यादव और श्रुति 75 किलोग्राम भार वर्ग में अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले हार गईं और उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
जिस तरह के ये मुकाबले रहे और जिस तरह का ये पूरा टूर्नामेंट भारतीय बॉक्सरों के लिए रहा है, काफी उत्साहवर्धक नतीजे हैं। और सबसे जो खास बात रही कि भारतीय खिलाड़ी अपने टर्फ पे खेलते हुए नजर आए, वो अपनी स्ट्रेटजी और अपनी टेक्निक्स पे खेले, गेम में डोमिनेट करने की पोजीशन में नजर आए और परिणाम हमारे सामने हैं कि 4 खिलाड़ी फाइनल में हैं।
बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब हो सकता है बहुत से लोगों को लगता हो कि नहीं, जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको उस हिसाब से वैल्यू किया जाना चाहिए, पर मुझे हमेशा लगता है कि जब तक आप जूनियर्स या ग्रास रूट्स पे काम नहीं करेंगे, आपको ऊपर बड़े खिलाड़ी मिलेंगे नहीं। और उस हिसाब से कभी भी कहीं पे भी किसी भी खेल में जब जूनियर या सब जूनियर में सफलता मिलती है, तो वो हमेशा आपको एक बहुत अच्छा साइन देता है कि उस खेल में आपका फ्यूचर जरूर बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि आप जो अभी अंडर 18 या अंडर 20 में है, वो 2 साल बाद या 3 साल बाद आपको सीनियर लेवल पे परफॉर्म करते दिखेंगे। फर्क ये है कि बाकी देशों में जो जूनियर होते हैं वो उसी लय में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जूनियर से सीनियर में जाते हुए काफी खिलाड़ी हैं हर खेल में जो खो जाते हैं। और मुझे ये आई होप कि बॉक्सिंग में ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत समय के बाद हमारे पास लग रहा है कि शायद दोबारा से हम बॉक्सिंग में एक स्ट्रांग नेशन बन सकते हैं। क्योंकि एक दौर था जब हमारे पास मेंस बॉक्सिंग जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी हर कैटेगरी में, बिल्कुल लाइट वेट से लेके हाई वेट तक। उसके बाद हमें काफ़ी दिनों तक कुछ मिला नहीं था। फिर विमेन बॉक्सर्स हमारी अचानक से बहुत तेज़ी से आई थी, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप्स, ओलंपिक्स, हर जगह मेडल जीते, पर अब वो भी कहीं ना कहीं गायब होती दिख रही हैं। तो ये जो फेजेस में आता है उसको अगर हमें अवॉइड करना है और एक सिस्टम चाहिए, तो हमें जूनियर्स पे ध्यान देना ही पड़ेगा।
जी बिल्कुल, आपने एक दौर की बात की 2008 में बीजिंग ओलंपिक के, उस ब्रॉन्ज मेडल के बाद विजेंद्र के एक पूरा पीक आया इंडियन बॉक्सिंग का, जो कॉमनवेल्थ में चला, एशियन गेम्स में खिलाड़ी गए और हर कैटेगरी में लाइट वेट से लेकर हैवी वेट तक भारतीय खिलाड़ी मेडल लाते थे और प्रोफेशनल लीग्स तक पहुंचे भारतीय खिलाड़ी।
तो जैसे मैंने कहा कि वो उस टाइम पे मेंस बॉक्सिंग बहुत तेजी से आई थी, उसके बाद जब वो जनरेशन गई तो अचानक लगा गायब हो गई है मेंस बॉक्सिंग, उसकी जगह ले ली विमेंस बॉक्सिंग ने, जिसमें मैरी कॉम ने शुरुआत की, लेकिन उसके बाद मैरी कॉम से आगे भी चीजें बढ़ती रही, लवलीना आई, निखत आई और प्रीति आई, वो चल रहा था। पर अब वो जनरेशन भी कहीं ना कहीं आपको खत्म होती दिख रही है, क्योंकि चाहे वो इंजरी की वजह से हो या फॉर्म की वजह से हो, आपको उतना पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। तो अब मुझे लगता है ये एकदम सही टाइम है जब आप अपने जूनियर्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि सीनियर में जाने के लिए कोई एज नहीं चाहिए होती है, जूनियर के लिए एज लिमिट होती है। तो अगर ये अच्छे हैं तो ये इस एज में भी आगे जाके आपके लिए मेडल ला सकते हैं।
जी बिल्कुल। और अब बात करते हैं फुटबॉल की, जहां ड्यूरेंट कप में आज नेरोका एफसी और इंडियन नेवी के बीच खेला गया पहला मुकाबला। गोल रहे ड्रॉ रहा, दोनों टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा। हालांकि मैच में गोल करने के कई मौके बने, लेकिन दोनों टीमें उन मौकों को भुनाने में नाकाम रही। वहीं एक अन्य मैच में इस समय ग्रुप बी में बीएसएफ एफटी और मोहम्मदन एससी का मुकाबला कोलकाता में जारी है। इससे पहले कल शाम को खेले गए मैच में ईस्ट बंगाल एफसी ने नामधारी एफसी को 1-0 से हरा दिया। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 9 और 10 अगस्त को बिहार के राजगीर में खेली जाएगी। बिहार का राजगीर इस चैंपियनशिप के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चैंपियनशिप का औपचारिक उद्घाटन कल होगा। खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने बताया कि पुरुष वर्ग में 8 टीमें भाग लेंगी और महिला वर्ग में भी 8 शीर्ष टीमें भाग लेंगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में रग्बी इंडिया के अध्यक्ष और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राहुल बोस ने कहा कि चैंपियनशिप के मुकाबले काफी रोमांचक होने जा रहे हैं। उन्होंने इस चैंपियनशिप के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कई खिलाड़ी जो आगे चलकर सीनियर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनका चयन हमें इसी अंडर 20 वर्ग से होते हुए देखने को मिलेगा।
वेरी गुड टीम्स। अब हार जीत के बारे में मैं कभी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो प्रेपरेशन है इस बार बहुत उम्दा, बहुत सुनहरा प्रेपरेशन। मेरे ख्याल से अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो हमारे नजर होंगे उन प्लेयर्स को जहां पे हम देख सकते हैं कि टेक्निकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, क्योंकि 5 साल बाद आपका अगर टेक्निक ठीक नहीं है तो दिखाई देगा, और 5 साल बाद अगर आपका मेंटल प्रेपरेशन ठीक नहीं है तो वो भी दिखाई देगा। तो रग्बी में ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, जहां पे कुछ मतलब फाउंडेशन हैज टू बी, बुनियादी तौर से हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग।
जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे थे बॉक्सिंग के वक्त पे कि फाउंडेशन पे कितना जोर होने जा रहा है, तो भारतीय रग्बी टीम तैयार है और हम लगातार देख भी रहे थे कि गवर्नमेंट स्टेट वाइज छोटे डिस्ट्रिक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट कर रही है एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए।
बिल्कुल। और जहां तक राजगीर की बात है, वहां पिछले कुछ समय से काफी चीजें हुई हैं। हॉकी एशिया कप भी वहीं होने वाला है इस मंथ के एंड में, और जिस तरह से उस पूरे कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जा रहा है, जो एम्बिशन है वो बहुत बड़ा है वहाँ पे। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इंडोर गेम्स, रग्बी, हर चीज़ के लिए वहाँ फैसिलिटी बनाई गई है। बहुत बड़ा कैंपस है। सिर्फ एक चीज का उनको ध्यान रखने की जरूरत है, जो हिंदुस्तान में बहुत होता है कि आप बना देते हैं, आप एम्बिशियस होते हैं, लेकिन उसके बाद जब उसके देखभाल की बात आती है, उसके यूटिलिटी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो वो अगर ना हो तो मुझे लगता है राजगीर इस टूर्नामेंट से एक बहुत बड़े स्पोर्टिंग हब के रूप में निकल के आ सकता है।
जी बिल्कुल, और भारतीय रग्बी के लिए भी एक बहुत अच्छा साइन वहां से निकलने जा रहा है।
और बिहार में जिस तरह से बिहार ने जिस तरह से रग्बी और आर्चरी और ऐसे खो खो, कबड्डी, ऐसे खेलों को बढ़ावा दिया है जो जिसे कह सकते हैं हमारे इंडिजीनियस गेम्स हैं, और जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, तो ये एक अच्छी चीज है कि रग्बी वहां पे आ रही है, क्योंकि बिहार, झारखंड एक पूरा बेल्ट है जहां से मेजॉरिटी हमारी महिला टीम स्पेशली निकल के आती है, तो उस हिसाब से महिला स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है ये।
जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा संकेत भारतीय खेल जगत के लिए होने जा रहा है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय ध्वज पर एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है। सरकार ने नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि ये प्रतियोगिता मेरा युवा भारत पहल के अंतर्गत आयोजित की जा रही है और नागरिक और माई भारत पोर्टल पर इस क्विज में भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को वर्तमान केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ सियाचिन की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। उत्तरा जी, आप स्टूडियो में आई, तमाम खेल खबरों पर आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।